તારીખ 8/6/1996 માઉન્ટ આબુમાં થયેલ તત્વચર્ચા.
પત્રાંક 833 મેં રૂપાલુદેવને આત્મભાવના મેં આને કે પહેલે સત્પુરુષ કી બહુત મહિમા કી હૈ નીચે આખિર મેં આત્મભાવના કા વિષય ચલેગા ઉસ પત્ર મેં ઉસકે પહેલે સત્પુરુષ કી મહિમા બહુત કી હૈ સત કી નહીં સ્વરૂપ કી નહીં કી ક્યો સો વિસ્તાર સ્પષ્ટ કીજીએ આત્મભાવના વૃદ્ધિગત હોને મેં સત્પુરુષ કા ક્યા રોલ હૈ ડિટેલ છે સમજાઈએ આત્મભાવના ખુદ હી સત કી મહિમા હૈ આત્મભાવના ખુદ હી સત કી મહિમા હૈ તો વો તો આત્મભાવના મેં સત કી મહિમા તો આઈ આઈ અબ સવાલ વો હૈ કે પહેલે સત્પુરુષ કી ક્યો ક્યા પહેલે ઇસ વિષય કો નહીં લેકર કે પહેલે ઇસ વિષય કો ક્યો લિયા કે એસા હી ક્રમ પડતા હૈ ક્રમ મેં ભી એસા હી હૈ ના ઓર સત્પુરુષ કી મહિમા યે સત કી હી મહિમા હૈ ये व्यक्ति की नहीं महिमा है गुणों की महिमा है वास्तव में वो आत्मा की महिमा है इसलिए यहाँ कोई सत्पुरुष की महिमा और आत्मा की महिमा में कोई अंतर नहीं देखना चाहिए આત્મભાવના વૃદ્ધિગત હોને મેં સત્પુરુષ કી ક્યા ભૂમિકા હૈ સત્પુરુષ કી તો બહુ બડી ભૂમિકા હૈ વાસ્તવ મેં તો વહી આત્મા હૈ તો ઉસકી ભાવના મેં યે ભાવના સહેજ આ જાતી હૈ ઉસ તરહ સે ઉપરી ઉપરી દ્રષ્ટિ સે દો વાત લગતી હૈ વાસ્તવ મેં ભીતરી દ્રષ્ટિ સે એક હી બાત હૈ એસી બાત હૈ આજ કોઈ ઓર પ્રશ્ન નહીં હૈ તો અપન સ્વાનુભૂતિ દર્શન મેં સે કુછ વાત લે લે પરમા મહત્તા પર પદાર્થ મેં મહત્તા ઓર કુટુંબ પરિવાર મેં મમતા હો જાતી હૈ કિસી મુમુક્ષુ ને અપની બાત બતાઈ હૈ
બોલ નંબર
હૈ 654 विचार करें तो भी यह भाव टूटता नहीं है तो क्या करना। समाधान, यह उदय भाव है। कुटुंब परिवार में ममता होता है, उदय भाव है। यह जो आत्मा की लगन अंदर में लगे तो टूटे, विचार से नहीं टूटेगा। अपने को आत्मकल्याण की लगन लगनी चाहिए। आत्मा की लगन मैंने आत्मकल्याण की लगन लगनी चाहिए। नायक को पहचाने, आगे जाकर के नायक को पहचाने और उदय भाव से भिन्न हुए वेद ज्ञान में पहचान करके कि मैं एक नायक हूं, ये मेरा स्वरूप नहीं है, उस वक्त वास्तविक रूप से टूटता है। वेद ज्ञान के प्रयोग से और स्वरूप की पहचान से भिन्नत्व आता है तो ममत्व वास्तविक रूप से टूटता है। उसके पहले उदय भाव में भले हो और स्वयं विचार भी करे, परंतु मात्र अकेला विचार से नहीं, पुरुषार्थ करे। पुरुषार्थ प्रयोग के काल में होता है, विचार के काल में पुरुषार्थ नहीं होता है। पुरुषार्थ करे तो उदय का रस मंद पड़ जाता है, मंद पड़ के टूट जाता है। यह सब सारभूत नहीं है। ये जो परिवार आदि जो है उसमें कोई सार नहीं है। सारभूत तो मेरा आत्मा ही है, उसका कोई शरण नहीं रहेगा। शरण तो आत्मा का होगा। यह सब निसार है, निकम्मा है। निसार है मैंने, निकम्मा है। ऐसा अंदर से निश्चय आवे तो उस जाति का रस टूट जाए। ऐसा निश्चय रहे तो इस जाति का रस टूट जाए। महिमावन तो मेरा आत्मा ही है, ऐसे अकेला मात्र विचार किया करे, आत्मा का विचार किया करे कि महिमावन तो मेरा आत्मा ही है, परंतु अंदर से निरसता नहीं आए तो रस नहीं टूटे। मेरा आत्मा शाश्वत है। वास्तव में यह कुटुंबादि मेरा स्वरूप नहीं, वो कोई सारभूत नहीं और कोई महिमावंत भी नहीं है। यह तो सब मात्र विकल्प से माना हुआ है। ये जो पारिवारिक संबंध है वो तो एक कल्पना से माना हुआ है, विकल्प माने कल्पना से माना हुआ है। इस जाति का अंदर से वैराग्य आना चाहिए कि तो कल्पना मात्र संबंध है, वास्तव में कोई संबंध नहीं है, वास्तव में कोई किसी का कुछ है ही नहीं। ऐसा अंदर से वैराग्य आना चाहिए, आत्मकल्याण की लगन लगनी चाहिए। आत्मकल्याण के लिए लगन लगनी चाहिए। विचार के साथ ये बधूं ये सब आए तो रस टूटे, ऐसा लगन वगैरह हुए तो रस टूटे। उदय भाव में खुद जुड़ जाता है, परंतु अंदर से रस टूट जाना चाहिए। हाँ, वो तो अभिप्राय बदलना चाहिए, अभिप्राय बदलना चाहिए, वो तो है ही। इसके बिना रस नहीं चाहिए, अभिप्राय बदलने से निषेध आएगा ना, ये मैं नहीं। बहुत शुभ में से अशुभ में आता है, अशुभ में से शुभ में आता है, परंतु शुभ मेरा स्वरूप नहीं, निषेध आना चाहिए। शुभ भाव का भी निषेध आना चाहिए, उससे भी मैं भिन्न महिमावंत चैतन्य हूं और विभाव में खड़ा रहना ये सब झूठा है। उस प्रकार से अंदर से आत्मा की लगन और महिमा आनी चाहिए, इसके बिना रस टूटे नहीं। बाहर के सभी राग ऐसे होते हैं, परंतु चैतन्य प्रति का जो प्रेम जागृत हो जाए तो बाहर का प्रेम अंदर से टूट जाए। स्वरूप का प्रेम लगे तो बाहर का प्रेम टूट जाए। एक मेरा आत्मा ही सर्वस्व है, वही जानने देखने लायक है, यही विचारने के लायक है, उसका ही भजन करने योग्य है, बाकी सब निकम्मा है, बाकी सब निकम्मा है। बाहर में जिसने वस्तु स्वरूप बताया, बाहर में जिसने वस्तु स्वरूप बताया, यह जिनेन्द्र देव हृदय में रखने योग्य है, उसको मुख्यता देना। देव शास्त्र गुरु हृदय में रखने योग्य है, शास्त्र का चिंतन करने योग्य है, इसके सिवा बाहर किसी के पर दृष्टि रखने योग्य नहीं है, किसी के पर लक्ष्य देने योग्य नहीं है। बाहर में लक्ष्य देना है तो देव गुरु शास्त्र लेना, अंदर में आत्मा, बस बात खत्म। राग करने लायक नहीं है ऐसा अंदर से जो सच्चा निर्णय आए, सच्ची लगनी लगे तो और सच्चा वैराग आए तो बाहर की महत्ता टूट जाए। बाकी जीव बाह्य वैराग्य बहुत बार ला करके भी रस तोड़ा है, परंतु यथार्थ रूप से तो तब टूटता है कि जब आत्मा को लक्ष्य में ले, नायक को पहचाने, तो वास्तविक रूप से रस टूटता है। आप कहेंगे कि सत्पुरुष की बात क्यों नहीं किया, ये बात आएगी आप लोगों को, लेकिन बहुभाग सत्पुरुष ये बात नहीं करते हैं, क्योंकि सत्पुरुष खुद अपने मुंह से सत्पुरुष की बात करे वो ठीक नहीं लगता, इसलिए बहुभाग सत्पुरुष ये बात नहीं करते। कृपालु देव तो वास्तव में कृपालु देव थे, उन्होंने वो साहस किया, बाकी कोई नहीं करते।
ठीक
है, ऐसा है, एक गांवड़े का ग्वार को भी उतनी अक्ल है कि मुझे दर्द हुआ है तो मैं वैद्य डॉक्टर के पास चला जाऊं। आप लोग तो उस गंवार से तो ज्यादा बुद्धि वाले हैं ही।
आपने कैसे मान लिया?
तो ऐसी बात को क्या सिखाना है?
બધા જેવી આઠ ઠેકાણે ભૂલ ખાધી છે ને, કૃપાળુ દેવે કીધું છે ને, કૃપાળુ દેવે તો કીધું છે ને, જીવ ભૂલ્યો હોય તો એક જ ઠેકાણે ભૂલ્યો છે.
इसलिए तो बार बार उन्होंने वो बात कही.
बराबर.
ऐसा है
जी
कि जो यह बात सुनने को आया वो तो सतपुरुष से तो सुन रहा है, तो सतपुरुष का तो पास आ गया है. हम नहीं आए उसकी बात उसको लोग बोले तो ठीक है, जो आ गया उसको क्या बोले? एक निष्ठा है तन मन धन से भक्ति करना, ठीक है, एक निष्ठा से यानी आत्म कल्याण की एक भावना से सत्पुरुष की तन मन धन से भक्ति करना. मन से तन मन धन इसका मतलब क्या है कि इसके पर आसक्ति छोड़ देना, तन मन धन की आसक्ति छोड़ देना. क्यों? क्योंकि आगे लिया है कि उनको तो कोई जरूरत नहीं है भक्ति की, सतपुरुष को तो भक्ति की जरूरत नहीं है, फिर भी ऐसी आसक्ति टूटे बिना वास्तव में काम नहीं होता. इसलिए वो सतपुरुष का एक बहाना मिलता है आसक्ति टूटने में. इतनी बात है. दिसंबर 1994 अंतरंग जिज्ञासा से जो प्रश्न उठे उसका स्वरूप क्या तथा उससे क्या लाभ हो एवं उससे विपरीत जो प्रश्न उठे तो उसमें क्या नुकसान हो और उससे कैसे बचना, समाधान. अंतरंग में से जो प्रश्न उठता है उस प्रश्न का मूल स्वयं के परिभ्रमण की चिंतना रूप होता है तथा किसी भी कीमत पर कोई भी उपाय करके परिभ्रमण के अभाव करने के लक्ष्य से अंतरंग से प्रश्न उठता है। वैसे प्रश्न का समाधान ज्ञानी से अथवा स्वयं के अंतर प्रयोग से प्राप्त होने पर भवभ्रमण के नाश की दिशा सूझती है। समाधान आने से दिशा सूझ जाती है, यानी कि आत्मकल्याण की सूझ अंतर से आती है। ऐसी अंतर जिज्ञासा का मुख्य लक्षण स्वरूप प्राप्ति की लगन और आतुरता है। सत ही जिज्ञासा से, सत की जिज्ञासा से तथा सिर्फ तर्क लड़ाने के प्रकार से जो प्रश्न उठते हैं, उनमें अधिकांश अप्रयोजनीय प्रश्न होता है। वो मिसप्रिंट है, सत ही जिज्ञासा से वो बात नहीं होगा। ऊपर की जिज्ञासा से या सिर्फ तर्क लड़ाने के प्रकार से जो प्रश्न उठते हैं, उनमें अधिकांश अप्रयोजन भूत प्रश्न होते हैं, जिससे निज प्रयोजन चुक जाने में आता है। अप्रयोजन प्रश्न उठता है तो अपना प्रयोजन छूट जाता है। अतएव ऐसे नुकसान से बचने के लिए इस प्रकार के प्रश्नों से दूर रहना चाहिए या तर्क को शांत कर देना चाहिए एवं आत्मकल्याण की अवगाढ़ भावना में आना चाहिए। आत्मकल्याण की तीव्र भावना में आएंगे तो ऐसा प्रश्न नहीं आएगा। यदि यौ न करने में आए तो सत ही जिज्ञासा में, जिज्ञासा से उठते प्रश्न का छिछला समाधान होता है। सत ही मैंने ऊपर वाले, और आत्मकल्याण की जिज्ञासा मर जाती है, जिसमें आत्मविकास की दिशा बंद हो जाती है। इतना समाधान दिया है। श्रीमद् राजचंद्र जी के वचनामृत में आता है कि तू बिजू दूसरा कुछ मत खोज, एक सत्पुरुष को खोज और उसके चरण कमल में सर्वभाव समर्पण कर दे। पीछे तुझे मोक्ष नहीं मिले तो मेरे से ले जाना। यह वचन को विशेष समझाने की कृपा करिए। समाधान, तत्व को जिसने ग्रहण किया है, स्वानुभूति जिसने प्रकट की है, मार्ग जिसने प्रकट किया है, और जो मार्ग को जानते हैं, ऐसे एक सत्पुरुष को खोज। सत्पुरुष माने क्या है? कि जिसने तत्व को ग्रहण किया हो, स्वतत्व को, परम तत्व को, और स्वानुभूति प्रकट की हो, अनुभव किया हो। मोक्ष मार्ग जिसने प्रकट किया हो, और जो मोक्ष मार्ग को जानते हैं, ऐसे एक सत्पुरुष को खोज, वो तुमको सब कहेंगे, कहेगा, बताएगा। तुम्हें अंतर से कुछ समझ में नहीं आता तो सत्पुरुष को खोज, अपने आप कुछ नहीं आता तो सत्पुरुष को खोज, और बाद में सत्पुरुष जो कहे, जो कहते हैं, उसका आशय को ग्रहण कर ले, तो आत्मकल्याण का आशय होता है उसका कथन, उसको ग्रहण कर ले। मोक्ष मेरे से ले जाना, यानी कि तुझे मोक्ष मिलने वाला है ही, इसका मतलब क्या है कि तुझे मोक्ष मिलने वाला है ही। सत्पुरुष को तूने ग्रहण कर लिया और पहचाना तो तुझे मार्ग मिलने वाला है ही। देखो, पहचाना तो मार्ग मिलने वाला है ही। मोक्ष प्रकट होने के प्रकट होगा ही, इसलिए मोक्ष न मिले तो मेरे से ले जाना, इसका अर्थ यह है कि तुझे मोक्ष अवश्य मिलने वाला है ही। अनंत काल से सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हुआ है, उसको देव गुरु, देव शास्त्र का गुरु मिले और अपना उपादान तैयार हो तो प्राप्त हो जाए, ऐसा निमित्त उपादान का संबंध है। अंतर से देशना लब्धि प्रकट हो जाए तो अवश्य सम्यक दर्शन प्राप्त होगा। सम्यक दर्शन होता है वो अपने उपादान से, परंतु निमित्त के साथ ऐसा संबंध होता है, इसलिए तू एक सत्पुरुष को खोज, उसमें तुमको सभी मिल जाएगा। सत्पुरुष मिलने से तुमको सभी मिल जाएगा। सत्पुरुष तुम्हें मिले और मार्ग प्राप्त हुए बिना रहे, ऐसा नहीं बनता, अवश्य मार्ग प्राप्त होवे ही। जो खोज करके आत्मा पहचाना बिना रहेगा नहीं, रहेगा ही नहीं। देखो बात क्या है, सत्पुरुष को पहचानेगा तो आत्मस्वरूप पहचान में आए बिना रहेगा ही नहीं। तो सभी ज्ञानियों का अभिप्राय तो एक ही होता है, अनुभव एक सा है तो अभिप्राय तो वही रहेगा, उनका भी वही अनुभव है। गुरुदेव मिले, गुरुदेव को पहचाना तो आत्मा मिल गया।
पहचान ऊपर से,
हाँ, पहचान ऊपर बहुत वजन है, बैंसले का पहचान ऊपर बहुत वजन है। जो भगवान को पहचाने ये अपने को पहचाने, और अपने को पहचाने वो भगवान को पहचाने, भगवान के द्रव्यगुण पर्याय को पहचाने या अपने द्रव्यगुण पर्याय को पहचाने। तू सत्पुरुष को पहचान तो तुझे आत्मा पहचाने बिना रहेगा नहीं। फिर से आया और उससे अवश्य तुझे स्वानुभूति की प्राप्ति होगी और अवश्य तुझे मोक्ष मिलेगा ही। अनादिकाल से अपने लिए अनजाना मार्ग है, अनादिकाल से अपने लिए ये मार्ग अनजाना है। अतः सम्यक दर्शन की तैयारी होवे और प्रथम सम्यक दर्शन होवे तब देव या गुरु का निमित्त अवश्य होता ही है। इसलिए तो सत्पुरुष को खोज ऐसा कहते हैं। सत्पुरुष को तू पहचान तो तुझे आत्मा पहचाना बिना रहेगा नहीं, ऐसा इसका अर्थ है। यही आशय है उसमें। स्वयं सत्पुरुष को ग्रहण किया पहचाना कब कहा जाए, कब बोला जाए कि सत्पुरुष मिलाए पहचाना कि आत्म प्राप्ति होवे। तो जो आत्म प्राप्ति न हो तो सत्पुरुष को पहचाना ही नहीं है, ग्रहण किया ही नहीं और उसका आशय भी ग्रहण नहीं किया। बहुत स्पष्ट लिया है, तीन चार दफे वही बात किया है कि जो सत्पुरुष को पहचानेगा वो आत्मस्वरूप को अवश्य पहचानेगा। नानी के पास जाकर के तू भक्ति मांगना, इसका अर्थ क्या? प्रश्न वो क्या है कि नानी के पास जाकर के तू भक्ति की मांग करना, इसका क्या अर्थ है? माने क्या ऐसा उसमें क्या कहना चाहते हैं? समाधान, भक्ति यानी कि महिमा करना। भक्ति करना माने महिमा करना। उसके पास से मैं जान लो ऐसे अकेले विकल्प करने के बजाय तू भक्ति यानी कि महिमा करना। जान लेने का मुख्य बात नहीं रखना, भक्ति करने की मुख्य बात रखना। सत्पुरुष की दशा की महिमा आने से तुझे तेरा आत्मा की महिमा आने का और तेरा आत्मा की दशा प्रकट होने का अवकाश है। अनुसंधान वो कर दिया है कि सत्पुरुष की महिमा आएगा तो तेरा आत्मा का अनुसंधान हो जाएगा। मैं जान लूं ऐसे कोरे ज्ञान की मांगनी करने के बजाय, अर्थात इसका क्या प्रश्न करते हैं ना लोग, ऐसे नहीं करके उसकी महिमा करना। तो इससे तुझे तेरे चैतन्य की महिमा आएगी। ऐसा करने से तुझे तेरे चैतन्य की महिमा आएगी और चैतन्य के और मुड़ेगा तू। बाहर देवगुरु शास्त्र की महिमा करने से अंतर में तेरे आत्मा की महिमा आने का अवकाश है। उसकी महिमा बिना तू जानेगा तो किस काम का? तो महिमा बिना जानेगा तो किस काम का, ऐसा करके निकाल दिया है कि तेरी जानकारी कोई काम में आने वाली नहीं है। जिसने आत्मा की दशा प्रकट की है और आत्मा की साधना की है, ऐसा गुरु की महिमा तुझे नहीं आए तो तुझे तेरा आत्मा की महिमा आने का कहाँ अवकाश है? इसके पहले कोई अवकाश है ही नहीं। सीधा तो आत्मा की महिमा करने जाएगा, नहीं आएगा, कोई अवकाश ही नहीं है। तेरे आत्मा की महिमा ना आए और एकला जानकारी किया करे तो भी आत्मा तरफ आने का अवकाश नहीं है। जानकारी से आत्मा तरफ आने का अवकाश नहीं है। इसलिए ज्ञान महिमा पूर्वक होना चाहिए, वरना ज्ञान कोरा हो जाएगा। ज्ञान महिमा पूर्वक होना चाहिए। महिमा बिना का ज्ञान तेरा स्वभाव तरफ आएगा नहीं। परलक्षी ज्ञान है ना, उस स्वभाव तरफ नहीं आएगा। अरिहंत भगवान के द्रव्यगुण पर्याय को जाने या अपना द्रव्यगुण पर्याय को जाने, भगवान की दशा की महिमा आवे तब भगवान के आत्मा की महिमा आवे, और तो निज आत्मा की महिमा आवे। गुरु की दशा की महिमा आवे तो गुरु को पहचाने, और गुरु को पहचाने तो अपने को पहचाने। श्रीमद जी ऐसा लिखते हैं, देखो यहाँ श्रीमद जी का आधार लिया बेंसरी ने भी। श्रीमद जी ऐसा लिखते हैं कि ज्ञानी के पास से ज्ञान मांगने के बजाय भक्ति मांगना, क्योंकि उससे तुझे तेरा आत्मा की महिमा आएगी। ज्ञान का स्वभाव क्या है, विभाव क्या है, ऐसा तू तत्व विचार करके जानना। परंतु मात्र जान लो, सीख लो, पढ़ लो, ऐसा सब करने से तू उसमें ही रुक जाएगा, उसमें रुक जाएगा। जानने और पढ़ने में सुख रुक जाएगा और तुझे तेरे और मुड़ने का अवकाश रहेगा नहीं। गुरु के स्वभाव की महिमा आने पर तू सहज अंतर में तेरा मुड़ जाएगा, तेरे से विभाव में टिक सकेगा नहीं, तू नहीं टिक सकेगा। जो गुरु की दशा की महिमा आई तो आत्मा की स्वभाव की महिमा आएगी, और तो विभाव में नहीं टिक सकेगा। अपने और जाने का प्रयत्न उठेगा। नीच महिमा बिना ज्ञान अपने तरफ आता नहीं। यदि तुझे अपनी महिमा नहीं आती तो विभाव की महिमा में तो खड़ा रहेगा और स्वभाव तरफ नहीं जा पाएगा। इसलिए महिमा पूर्वक ज्ञान होता है। ज्ञान भक्ति तत्व विचार आदि आत्मा की महिमा पूर्वक होना चाहिए। ज्ञान भक्ति वैराग्य सब होता है तो अपने में मुड़ेगा। रुचि अपनी और की होगी। विभाव में एकत्व बुद्धि तन्मयता होगी तो अपनी ओर नहीं मुड़ सकेगा। इसलिए उससे तो निराला रहना। तेरी परिस्थिति का परिणति का वेग स्वभाव तरफ जाए, ऐसी अंदर से विरक्ति महिमा और तत्व विचार करना, और तू अपने को पहचानेगा। अपने को पहचान करके तेरे अपनी ओर मुड़ेगा, यानी कि ज्ञान वैराग्य भक्ति सब साथ में होगा रहेगा तो ही तेरे में मुड़ेगा। इसके बिना मुड़ना होता नहीं। ज्ञान बिना कहाँ जाएगा, और महिमा भक्ति बिना अकेला ज्ञान तो कोरा हो जाएगा। इसलिए ज्ञान महिमा विरक्ति बिना अपनी ओर नहीं जा सकते। उतना उत्तर दिया है।
155
सत्पुरुष की एक निष्ठा से तन मन धन से भक्ति करने, उसमें आपने कहा कि तन मन धन की आसक्ति का त्याग करना, करने का तो किस प्रकार से करने का, मैंने क्या है कि सत्पुरुष के प्रति झुकाव बढ़ जाता है तो स्वतः ही तन मन धन के ओर से झुकाव बढ़ जाता है, या सत्पुरुष की ओर झुकाव बढ़ने से समर्पण बुद्धि, सर्वार्पण बुद्धि आती है, तो एक समर्पण की बुद्धि में वो आसक्ति टूट जाती है, ऐसा कहने का अभिप्राय है, उस तरह से वो टूटती है। में लगे रहते हैं उसको कहते हैं साधु, वो गुणवाचक नाम है, वो गुणवाचक नाम है। ऐसा साधकपना का गुण जिसको प्रकट वर्तता हो उसको साधु कहते हैं, तो उसको बाह्य प्रवृत्ति करने का समय नहीं है, इसलिए सर्वसंग परित्यागी होकर के जंगल में रह जाते हैं, क्योंकि उसको कोई प्रवृत्ति करने का अवकाश है ही नहीं कि वो कुछ प्रवृत्ति करे, वो चंदा बंदा नहीं करते, कुछ प्रवृत्ति नहीं करते। अगर हो सकता है तो शास्त्र लिखे कभी प्रवृत्ति में या प्रवचन दे दे, फिर भी बंधे हुए नहीं है, कोई काम की जिम्मेवारी साधु नहीं लेते। ઘણા કાલ પછી તેનાથી દેશવતી સહાનુભવ, થોડા કાળમાં સર્વવિધિ ધ્યાનથી પણ થાય છે, ધ્યાનથી પણ થાય છે, તો ધ્યાન મેં બેઠતે હૈ તો ભી હોતા હૈ, ઓર ધ્યાન મેં નહીં બેઠતા હૈ તો ભી હોતા હૈ, ધ્યાન મેં બેઠે તો હવે હી હોવે, ઓર ધ્યાન મેં નહીં બેઠે તો ભી ઉનકો સહાનુભવ હો જાતા હૈ, જબકે નીચે કે ગુણ સ્થાન મેં બહુભાગ ધ્યાન કે કાલ મેં હોતા હૈ, ऐसे चलते फिरते होने का बहुत कम संभव है, कभी किसी को अपवाद रूप हो जाए अलग बात, बाकी ध्यान में ही अनुभव होता है, जबकि मुनिराज को चलते फिरते भी अनुभव होता है, खाते पीते भी अनुभव होता है, बोलते वक्त भी होता है, सोते वक्त भी होता है,
निद्रा में
निद्रा इतनी नहीं होती है, जैसे अपने को निंद्रा आती है उतनी निंद्रा नहीं होती है, रात को 12 बजे के बाद है, इसके पहले कभी सोते नहीं हो, तो सोते हैं
48 मिनट
के दो घड़ी के अंदर अंदर सोते हैं, 48 मिनट से कम, ज़्यादा नहीं सोते, और वो 48 मिनट में भी बहुत कम निंद्रा आती है, तो ऐसे करवट लेकर सोते हैं, कैसे सोते हैं, करवट लेकर सोते हैं, सीधे नहीं सोते, और गहरी निंद्रा में नहीं आते कभी, कागा निंद्र कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, जैसे कौवा होता है ना, तो बहुत सतर्क होता है, कोई भी कहीं से भी पत्थर मारेगा तो पत्थर लगे उसके पैर तो उड़ जाएगा वो, ऐसे उनका निंदर है, ऐसे उड़ती रहती है, गहरी निंदर नहीं आती है, उड़ती रहती है, क्योंकि उसको स्वानुभव चालू है, करंट है ना, ये स्वानुभव का करंट लग गया उसको, ज्ञान और आनंद का स्वसंवेदन का करंट चलता है, सर्दी गर्मी का भान नहीं, 5 इंद्रियों में उपयोग फैलता नहीं, 5 इंद्रियों में उपयोग फैलता नहीं, ऐसी अद्भुत दशा होती है, उसको नमो लये सब सावणम कहने में आता है। छठे गुण स्थान में वो झूलते हैं, झूला जैसे झूलता है क्षण में, झूला एक जगह रहता नहीं, क्षण में उधर क्षण में उधर, ऐसे क्षण में छठवा, क्षण में सातवा, फिर क्षण में छठा, फिर सातवा, ऐसे झूलते हैं। मनोयोग में जाता है तो प्रवचन देते हैं, शास्त्र लिखते हैं, वो होता है, कभी आहार करते हैं, लेकिन एक दफे, वो भी दोपहर को मध्यान्ह में, ऐसा नहीं भूख लगे तब खा ले, मध्यान्ह में एक दफे। मध्यान्ह में क्यों? कि मध्यान्ह में सभी लोग खाते हैं, सभी अपने अपने घर में खाना बनाते हैं, उस वक्त वो जा पहुँचते हैं, उस वक्त वो खाना खाने को निकलते हैं। तो जिस किसी ने आहार बनाया, इसमें से गोचरी मैंने थोड़ा ले लेते हैं, ज़्यादा नहीं लेते, थोड़ा लेते, पेट भर के कभी खाते नहीं, उनुद्री रहते हैं, मैंने 32 कवल से ज़्यादा आहार नहीं होता है। इस प्रकार से बहुत से नियम नियम हैं, इसके 56 दोष रहित, 46 दोष रहित आहार बोला है, 46 दोष रहित आहार बोला है, इस प्रकार से वो आहार लेते हैं। क्या है कि फिर स्वानुभव आ जाता है ना, स्वानुभव आ जाता है तो ये लगातार निंद्रा नहीं होती ना, लगातार निंद्रा नहीं होती, तो स्वानुभव तो आत्म जागृति है, तो उसमें निंद्रा कहाँ से रहेगी? अच्छा, इसलिए गहरी निंद्र नहीं होती, गहरी निंद्र हो तो गुणस्थान सातवा आवे नहीं, सातवा गुणस्थान छूट गया तो साधुपना छूट गया, बाहर में त्याग लिबास रह गया लेकिन अंदर में साधुपना नहीं गया, गुणस्थान नीचे का आ जाएगा, बदल जाएगा। हाँ, भगवान के साथ जो साधु जितने हैं, हाँ हो सकते हैं, हो सकते हैं, कितने साधु हुए भगवान महावीर के समोसरण में साधु थे, हो सकते हैं। पर कुछ किसी को, अगर किसी को सातवां छठा गुणस्थान नहीं हो पर बाह्य त्याग साधु जितना हो तो उसको द्रविलिंगी कहते हैं, और छठे सातवें गुणस्थान वाले को भावलिंगी कहते हैं। द्रविलिंगी तीन तरह के, एक साधु के सभी पंच महाव्रत समिति गुप्ति 28 मूल गुण निरतिचार पालन करे, पूरा त्याग हो, फिर भी छठा सातवां गुणस्थान के भीतर में आत्मा की दशा नहीं हो, वो द्रविलिंगी है। वो द्रविलिंगी के तीन भेद हैं, पंचम गुण स्थान वाले भी इसमें होते हैं लेकिन बाह्य का दिखाव वेश साधु का होता है, चतुर्थ गुण स्थान वाले सम्यक दृष्टि भी होते हैं उसका कि बाह्य वैसा ही होता है, और मिथ्या दृष्टि भी होते हैं उसका बाह्य वैसी तो ऐसा ही होते हैं, तीनों की और चारों की भावलिंगी की क्रिया एक सरी की, गुण स्थान समूह का अलग अलग, ऐसा हो सकता है। इसलिए बाह्य वेश से साधु पहचाना जाता नहीं है क्योंकि उसका तो चार भेद है। कैसा पक्षी? संवेग, संवेग, हाँ संवेग तो होता ही है, इसके बिना इतना चारित्र बाह्य चारित्र कहाँ से पाले, बाह्य चारित्र पाले कहाँ से, 28 मूल गुण पालना वो तो कोई आसान बात नहीं है। संवेग में उतना कषाय की मंदता सहज रहती हो, जो अपने परिणामों को दमन करके नहीं, सहज कषाय की मंदता में आ सकते हो, उनको उपदेश नहीं दिया जाता कि तुम तीव्र कषाय करके पाप करो, क्योंकि पाप में तो कसाई की तीव्रता है और शुभ में कसाई की मंदता है, तो सहज जो कसाई की मंदता में रह सकते हैं, आ सकते हैं, वो पालन करे, वो क्यों तीव्र कसाई करे? तो नहीं करेगा, तो उसके लिए मनाही नहीं है। लेकिन जो जो है वो उसको वैसा ही मानना, ऐसी बात है। हाँ, संवेग होता है उसको, ऐसा संवेग होता है और उसका कषाय सहज मंद रहता है। जैसे ब्रह्मचर्य है वो पांचवें गुण स्थान की सातवीं प्रतिमा है, लेकिन मिथ्या दृष्टि प्रतिज्ञा लेता है कि नहीं लेता है, तो उसको मना ही करे क्या कि तुम ब्रह्मचर्य नहीं लेकर के ब्रह्मचर्य पालन करो, ऐसा करे क्या? ऐसी बात नहीं है, वो शायद जिसको होता है उसको करने देते हैं, किसी को मना ही नहीं करना है कि तुम ऐसा मत करो। कितना भी शुभ भाव करे ऐसा नहीं लेना है, वो शायद नहीं करेगा तो अशुभ में चला जाएगा। इसका निषेध तो शुद्धता के आदर पूर्वक होता है, वही सम्यक है। जो शुभ भाव का निषेध आता है ग्रंथों में या उपदेश में, भगवान की वाणी में भी आया, लेकिन शुद्ध परिणाम करने के आदर करने के स्थान में उसका निषेध किया है, वैसे सीधा निषेध नहीं किया है। जो सीधा निषेध करता है वो बात को समझते नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। उसको शुद्ध भाव समझाओ, शुद्ध भाव का पुरुषार्थ करें, तब उसको छोड़े, इसके पहले छोड़ने की बात नहीं। ग्रहण पूर्वक त्याग है, शुद्धात्मा का ग्रहण करे तो शुभ राग का त्याग करे। शुद्धात्मा का ग्रहण किए बिना शुभ राग का त्याग करेगा तो अशुभ राग में चला जाएगा, तो नुकसान हो जाएगा उसको। तो बात में तो कोई विवेक तो होना चाहिए ना, ये तो बहुत महाविवेक का धर्म है, जैन धर्म है वो तो महाविवेक का धर्म है, सामान्य विवेक नहीं है, लोकोत्तर विवेक है उसमें। लोगों को भी इतना विवेक है कि अशुभ नहीं करना और शुभ करना, ये तो लौकिक विवेक है। तो अलौकिक मार्ग में लौकिक विवेक से ऊपर की बात होती है, नीचे वाली बात होती है? हाँ, तो ऊपर की बात है। थोड़े थोड़े काल के बाद स्वानुभव सातवें गुण स्थान में बार बार हुआ ही करता है, करना नहीं पड़ता, हुआ ही रहता है। वही परिणाम कि जो पूर्व में स्वानुभव रूप हुए थे, यह तो स्वानुभव रूप रहे, परंतु वहाँ से वो परिणाम मुख्य रूप से कर्मधारा से निकल करके स्वरसास्वाद रूप अनुभव रूप वो हो करके बढ़ते चलते हैं। कर्मधारा मैंने क्या, जो शुभाशुभ भाव है वो कर्मधारा है, क्योंकि शुभाशुभ भाव से शुभाशुभ कर्म बंधता है, और जिस भाव से कर्म बंद होता है, चाहे शुभ चाहे अशुभ, उस भाव से मोक्ष नहीं होता, क्योंकि बंद और मोक्ष परस्पर विरुद्ध है। इसलिए जिस भाव से बंद होता उस भाव से मोक्ष नहीं हो सकता। तो शुभ या अशुभ बंद होता है उससे निर्जरा होती है या मोक्ष होता है या संवर होता है, वो बात बनती तो कहते हैं कि जैसे जैसे जो पूर्व में स्वानुभव रूप हुए थे वो तो स्वानुभव रूप रहे, परंतु जो कर्मधारा से वहां निकल करके, फिर क्या है कि शुभाशुभ कम होता जाता है और वो रसास्वाद रूप जो स्वानुभव के परिणाम है वो बढ़ते जाते हैं। स्वानुभव दशा बढ़ती जाती है और कर्म की दशा, कर्म धारा शुभाशुभ है वो कम होती जाती है। जैसे जैसे पीछे के काल आता है वैसे वैसे पीछे पीछे के परिणाम रसास्वाद रस रूप अनुभव रूप हो करके बढ़ते जाते हैं, वो तो बढ़ते ही जाते हैं क्योंकि साधना ऊपर ऊपर के गुणस्थान में बढ़ती है और शुभाशुभ कर्मधारा बंधन कम हो जाता है, बंधन कम होता है और अबंध दशा बढ़ती जाती है, आखिर में बंध पूरा का पूरा खत्म होता है और अबंध दशा पूरी हो जाती है, तो उसको मोक्ष कहने में आता है। वो तो पूर्ण दशा है, मोक्ष है वो पूर्ण दशा है। इस प्रकार से वहाँ से अनुभव दशा के परिणाम बढ़ करके पलटते जाते हैं, पलटते पलटते बढ़ते जाते हैं, ऐसा कहना का अभिप्राय है। और वह क्षीण मोह गुण स्थान का अंत तक जानना, बारहवां गुण स्थान। क्षीण मोह गुण स्थान कौन सा है? बारहवां गुण स्थान। सातवें तक बात किया, फिर ध्यानस्थ दशा में आठवां होता है, नौवां होता है, दसवां होता है, फिर ग्यारहवें में नहीं आता है, क्षीण मोह वाला बारहवें में सीधा आता है, उपशम वाला ग्यारहवें आता है तो फिर वो वापस आता माना पड़ता है क्योंकि पुरुषार्थ कमजोर है। और जो क्षाई क्षपक श्रेणी लगाता है वही साधु सातवें गुण स्थान में कभी जोर कर देता है तो छठे में आता नहीं। सातवें गुण स्थान दो प्रकार का है, कमजोर और जोर वाला। कमजोर होता है तो छठे में आता है, छठा सातवां दोनों साधु दशा के लायक गुण स्थान है, दोनों में साधु भी बोला जाता है। और जोर लगाता है तो श्रेणी चालू हो जाती है आठवां नौवां दसवां ऊपर ऊपर के गुण स्थान में, एकदम मिनटों में ऊपर जाता है, क्या कोई सेकंडों में जाता है, कोई मिनटों में जाता है ऊपर ऊपर के गुण स्थान में। उसका दो प्रकार है, उपशम श्रेणी और क्षपक श्रेणी। उपशम श्रेणी वाला ग्यारहवें में आकर के फिर वापस आता है और क्षपक श्रेणी वाला दसवें से बारहवां में होकर के फिर फौरन तेरहवें गुण स्थान में अरिहंत दशा को प्राप्त होकर के तेरहवें गुण स्थान में विराजमान होते हैं। उसको केवली भी कहते हैं, अरिहंत भी कहते हैं, क्योंकि वहाँ अनंत चतुष्टय प्रकट हो जाते हैं, केवल ज्ञान, केवल दर्शन, केवल सुख और केवल वीर, वो चारों प्रकट हो जाते हैं। उस तरह से ऊपर के गुण स्थान का जो विवरण है वो स्वानुभव के दौरान कहा, बाह्य क्रिया और आचरण के दौरान इधर नहीं कहा, ये भीतर की बातें हैं, वो मुख्य बात है। फिर बाहर में शायद ये स्थिति रह जाती है, उतनी सी बात आगे की बात करेंगे।